जब आस्था दादाजी को खाना परोस रही थी, उसका दुपट्टा कंधे से हल्का सा सरक गया था। इससे उसके हाथ पर लगे गहरे नीले निशान, अरमान के जोरदार पकड़ने से बने निशान, दादाजी ने देख लिए थे। वो समझ गए थे कि अरमान ने आस्था को निशाना बनाया है, इसलिए वो आकाश के साथ आस्था को अस्पताल भेजना चाहते थे। दादाजी की बात सुनकर आकाश ने सिर हिला दिया था। आकाश दादाजी को कभी मना नहीं कर सकता था। दादाजी ने आस्था से कहा कि वो आकाश के साथ अस्पताल जाए और अपना इलाज कराए। पहले आस्था दादाजी की बात नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब दादाजी ने उसके निशान की ओर इशारा किया, तब आस्था ने सिर झुका लिया था। क्योंकि उसे ज्यादा दर्द हो रहा था, उसने जाने के लिए हाँ कह दिया था और जल्दी ही वो आकाश के साथ अस्पताल चली गई थी। वीर रायचंद ने अरमान के कल रात विदेशी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग ना करने का फ़ायदा उठा लिया था। उसकी नज़र अरमान की मीटिंग्स और उन प्रोजेक्ट्स पर थी जो वो अपनी कंपनी के लिए हासिल करना चाहता था। वो जानता था कि ये प्रोजेक्ट्स उसे उसकी कंपनी को रातों रात ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। इसलिए जब उसे पता चला कि अरमान मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाया है, वो बहुत खुश हुआ था। उसने उन जापानी और फ्रांसीसी क्लाइंट्स को अपने झांसे में ले लिया था। उसने उनसे वे प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवा लिए थे जो अरमान सिंघानिया की कंपनी को मिलने वाले थे। अब वीर रायचंद इंडस्ट्रीज को प्रोजेक्ट मिल गए थे। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाथ में जाम लिए वो सोचने लगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है मिस्टर अरमान सिंघानिया, बहुत जल्द मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। वीर ने दोनों पार्टियों को अपने प्रोडक्ट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल भेज दिए थे, जिनकी नेट प्राइस तकरीबन 3 से 4 करोड़ के बीच थी। इतने ज़्यादा सैंपल भेजकर वो बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि क्लाइंट इससे बहुत खुश होंगे और जल्दी ही प्रोजेक्ट के साथ साथ साइनिंग अमाउंट भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो पूरी तरह से खुश था और अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहता था। अरमान जल्दी ही अपने ऑफिस पहुंच गया था। देव की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो नहा धोकर नहीं आया था और उसने अरमान से कहा था कि वो घर जाकर फ्रेश होकर कपड़े बदलना चाहता है, लेकिन अरमान ने उसे मना कर दिया था। अरमान ने कहा कि वो ऑफिस में ही उसके प्राइवेट रूम में नहा और कपड़े बदल सकता है। ये सुनकर देव चौंक गया था। आज तक अरमान सिंघानिया ने अपने प्राइवेट रूम में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन आज के माहौल ने उसे मजबूर कर दिया था और उसने देव को अपने ऑफिस के प्राइवेट रूम में जाने की इजाज़त दे दी थी। देव जल्दी से वहां नहा धोकर तैयार हो गया था और उसने अरमान का कोट पहन लिया था। हालांकि देव उन कपड़ों में असहज महसूस कर रहा था। देव भले ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर नहीं था, लेकिन अच्छा खासा फिट था, लेकिन अरमान के सामने वो छोटा लग रहा था। वो कपड़े पहनकर बाहर आ गया था। अरमान ने एक बार भी नज़र नहीं उठाई और उसे निर्देश देने लगा, तुमने सारा काम कर लिया है ना? देव ने हाँ कहा था, लेकिन उसे सुबह ही ये जानकारी मिल चुकी थी कि कल रात दोनों देशों के विदेशी क्लाइंट्स को वीर रायचंद ने अपनी ओर कर लिया है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब ये बात अरमान को कैसे बताएगा। अरमान का गुस्सा सहने की हिम्मत उसमें कम थी, लेकिन उसे ये बताना ज़रूरी था। देव ने कम शब्दों में कहना शुरू किया, बॉस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही देव ने ये कहा, अरमान ने उसकी ओर देखा और तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, यही ना कि वीर रायचंद ने दोनों विदेशी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए हैं। ये सुनकर देव हैरान हो गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि अगर अरमान को पहले से ही पता है तो उसने इसका समाधान भी निकाल लिया होगा। देव टेंशन फ्री हो गया था और जल्दी ही सभी लोग प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस की ओर रवाना हो गए थे। जल्दी ही शहर के लगभग सभी बड़े लोग वहां मौजूद थे। प्रोजेक्ट डीलर मिस्टर नारायण अवस्थी भी वहां बैठे हुए थे। सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स उनके हाथों में थी। शहर के प्रोजेक्ट्स बड़ी कंपनियों को दिए जाते थे और विदेश के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए शहर की 5 कंपनियों ने नामांकन दर्ज कराए थे। सबने वीडियो कॉल मीटिंग के जरिए विदेशी क्लाइंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई थी, लेकिन अरमान ऐसा नहीं कर पाया था। वो रात में अपनी प्रेजेंटेशन विदेशी क्लाइंट्स को नहीं दे पाया था। वीर रायचंद, जिसने विदेशी क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल भेज दिए थे, बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आज ये प्रोजेक्ट उसी के होंगे। जब से उसे पता चला कि अरमान मीटिंग नहीं कर पाया है, वो हवा में उड़ रहा था। वो जानता था कि ये दोनों प्रोजेक्ट अरमान की कंपनी को पीछे छोड़कर उसकी कंपनी को नंबर 1 पर ला देंगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अरमान का निराश चेहरा भी देखना चाहता था, लेकिन अरमान वहां आकर किसी राजा की तरह बैठ गया था। उसने एक बार भी वीर रायचंद की ओर नहीं देखा, जबकि वीर रायचंद अपने काले चश्मे के पीछे की काली आंखों से गुस्से और नफरत से सिर्फ अरमान को ही देख रहा था। मिस्टर नारायण अवस्थी की आवाज़ गूंजी, वो सबको डिटेल्स देने लगे। सो जेंटलमैन, जैसे कि आप लोगों को पता है, विदेशी क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज आप में से किसी एक को दिए जाने वाले हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे फैसले का सम्मान करेंगे। और विदेशी क्लाइंट्स ने जिस भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए चुना है, आप ईमानदारी के साथ उनके वो प्रोडक्ट उन्हें जितनी क्वांटिटी में होने चाहिए वो उन्हें देंगे। वीर रायचंद मिस्टर अवस्थी की बात सुनकर थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर बोला, मिस्टर अवस्थी, आप इस तरह से सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपने क्लाइंट को कैसे खुश करना है। प्लीज बेकार का ज्ञान मत बांटिए और जल्दी बताइए मुझे कहां पर साइन करना है। वीर रायचंद मान बैठा था कि प्रोजेक्ट उसी के होने हैं, इसीलिए वो साइन करने के लिए उतावला हो रहा था। देव वीर रायचंद की बेवकूफी पर मुस्कुरा रहा था। जिस तरह से अरमान सिंघानिया शांत बैठा हुआ था, उसे अंदाजा हो गया था कि ये प्रोजेक्ट सिंघानिया इंडस्ट्रीज को ही मिलेंगे। लेकिन वीर रायचंद को लग रहा था कि उसने सारा सेटअप पहले ही कर लिया है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ उसे ही मिलेंगे। इसीलिए उसे मिस्टर अवस्थी का भाषण देना, क्वांटिटी या क्वालिटी की फिक्र करना अजीब और फिजूल लग रहा था। इसीलिए उसने मिस्टर नारायण अवस्थी से कहा कि वो इस तरह की बातें ना करें, वो अपना अच्छे से प्रोजेक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी जानते हैं। वो सिर्फ प्रोजेक्ट पाने वाली कंपनी का नाम अनाउंस करे और फिर साइन करवाए। उसे बस अरमान सिंघानिया का निराश चेहरा देखना था। मिस्टर नारायण अवस्थी वीर रायचंद की बात सुनकर एक पल के लिए गुस्से से भर गए थे। वीर रायचंद ने बड़ी ही बदतमीजी से उनसे बात की थी, लेकिन अगले ही पल वो फाइलें खोलकर पांचों फाइलें चेक करने लगे और एक फाइल अपने हाथ में लेकर डिटेल्स देने लगे। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने कल रात मीटिंग की है और सभी ने अपने अपने अलग तरह के प्रेजेंटेशन दिए हैं, लेकिन मिस्टर अरमान सिंघानिया आप अपनी कंपनी की तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, ये बात भी यहाँ पर मेंशन है। लेकिन फिर भी मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विदेशी क्लाइंट्स ने ये प्रोजेक्ट सिंघानिया इंडस्ट्रीज को ही दिए हैं। ये सुनते ही वीर रायचंद गुस्से से पागल हो उठा था। वो फटाफट उठकर मिस्टर नारायण अवस्थी का गिरेबान पकड़कर बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को कैसे जा सकते हैं? जरूर तुम लोगों ने ही कुछ ना कुछ पैसे खाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा था, लेकिन तब तक मिस्टर नारायण अवस्थी भी अपने कंट्रोल से बाहर हो गए थे। उन्होंने जल्दी ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए और वीर रायचंद को गार्ड्स को सौंप दिया था। अपनी हद में रहो मिस्टर वीर रायचंद, तुम इस तरह से एक माननीय प्रोजेक्टर पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते हो। और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कुछ भी विदेशी क्लाइंट का फैसला है हम केवल वो बता रहे हैं।
और एक और बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात आपने जो विदेशी क्लाइंट्स को अपने सैंपल के तौर पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स भेजे हैं, वो भी अब आपको नहीं मिलेंगे, वो सब भी अब रद्द किए जाते हैं। मिस्टर अवस्थी प्रोजेक्ट की फ़ाइल अरमान को थमाकर उसके सिग्नेचर लेते हुए जल्दी ही वहां से चले गए थे। अरमान मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। वो तुरंत वीर रायचंद के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करने लगा था। वीर रायचंद गुस्से से बोला, आखिर कैसे किया तूने ये सब कुछ? तूने तो कोई मीटिंग ही नहीं की थी, तो फिर कैसे लगा तेरे हाथ में ये प्रोजेक्ट्स? अरमान सिंघानिया अपनी उंगली अपने होठों पर रखते हुए बोला था, श्श। अरमान सिंघानिया को ज्यादा ऊंची आवाज पसंद नहीं है। और तुम ये जानना चाहते हो ना कि कैसे किया मैंने ये सब कुछ?